विष्णुपाद परमहंस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य शिष्यमतिष्टिवंद्र शिशुवक्तिवेदांत स्वामी श्लोकोपाधि विस्कॉन्सिन तपकाचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य शिष्यमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्लोक प्रभुपाद की समवेद भक्तवृंद की ग्रंथराश्रीमद्भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय आठवां श्लोक संख्या नंबर 17। कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। पुरा अन्येन व्रजपते साधो दस्यु पीड़िता राजके रक्षयामानना जिज्ञु दस्युन् समेदिता पुराणेन गजपते पुराणेन गजपते साधयो दशयो पीडिता साधवो दशयो पीडिता अराजके रक्षयमाना अराजके रक्षयमाना जिक्युर्दस्युन् समेदिता जिक्युर्दस्युन् समेदिता।
Thank you.
माता है। शब्दार्थ इस प्रकार है, पूरा पूर्व काल में अन्येन कृष्ण द्वारा व्रजपते हे व्रजराज साधव ईमानदार दशयु पीड़िता चोर उच्चक के द्वारा सताए हुए अराजके अनिमित सरकार होने पर रक्षमाना सुरक्षित थे। जिज्ञु जीत लिया दशयुन चोर उच्चकों को समेदिता उन्नति की। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक प्रभुपाद जी के द्वारा। श्लोक प्रभुपाद की अनुवाद। हे नंद महाराज, जैसे कि इतिहास बतलाता है कि जब अनियमित सत्य शासन तथा और इंद्र को उपस्थित कर दिया गया था और लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करना तथा उनकी समृद्धि के लिए यह बालक प्रकट हुआ और इसके चोर उच्चकों को का दमन कर दिया। तात्पर्य, इंद्र इंद्र ब्रह्मांड का राजा है, असुर चोर तथा उनके सदैव इंद्र को सताते हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोकम, किंतु जब इंद्र के शत्रु इंद्रारी का प्रधान्य हो जाता है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृडियन्ति युगे युगे। जय श्री श्री राधा विद्यारी भगवान जगन्नाथ बलदेव पुत्र होम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानानंदनिशलाक्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवृष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदानं ददाति स्वप्रदानिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्री उदप्र कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाधान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस होने के उपलक्ष पर आज हम उसी के ऊपर कथा करेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर। तो पूरा विषय हमारा इसी पर होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, जिन्होंने 1933 में श्री प्रभुपाद जी को दीक्षा प्रदान किया, ऐसे बताया गया है। 1922 में श्री प्रभुपाद जी का प्रथम मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुआ और 1933 में उन्होंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त किया और 1944 में श्री प्रभुपाद ने बैक टू गॉड एंड मैगजीन शुरू किया और 1955 में श्री प्रभुपाद ने वानप्रस्थ आश्रम धारण किया और 1966 में श्री प्रभुपाद ने प्रथम इस्कॉन की स्थापना की और न्यूयॉर्क में, और 1977 में श्री प्रभुपाद इस धराधाम को छोड़कर चले गए। तो वैसे प्रभुपाद ने अपने कुछ ही समय में ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाए और हमेशा श्री प्रभुपाद कहते थे कि मैं अपने गुरु महाराज के सामने मूर्ख हूँ और ये जो भी कुछ है सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से है। तो श्री प्रभुपाद जी के पास जितने भी शिष्य उनकी सेवा के लिए उनको जब आंदोलन में सहयोग देने के लिए जब आते थे तो श्री प्रभुपाद कहते थे ये सब मेरे गुरु जी के द्वारा भेजा गया शिष्य है और जो भी कुछ हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका प्राकट्य, इनके विषय में कई भक्ति रसामृत महाराज के मुखारविंद से मैंने एक उनके प्रवचन में सुना था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भविष्यवाणी के विषय में पद्म पुराण में वर्णन किया गया। और क्योंकि ये इतने बड़े महापुरुष थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसलिए उनकी चर्चा शास्त्रों में भी पहले से की गई थी। भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में हमेशा यह आकांक्षा रहती थी कि मुझे एक ऐसा संतान प्राप्त हो जो जगन्नाथ जी के गुणों को पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार कर सके। हमेशा निवेदन करते थे और हमेशा जगन्नाथ जी के पास जाकर रोते थे और उन भक्ति विनोद ठाकुर को 13 पुत्र प्राप्त हुए, उनमें से जो अंतिम जो था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनका जब प्राकट्य हुआ 1974 में और फरवरी 6 को इनका प्राकट्य हुआ, और इनका प्राकट्य जो हुआ उनका जो नक्षत्र जो है ऐसे बताया जाता है कि ये कर्कट लग्न का नक्षत्र है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा ये कहते थे कि मेरा जो राशि जो है वो कर्कट लग्न, यानी कि वो क्रैब, एक बार वो जो केकड़ा जो होता है एक बार किसी वस्तु को अगर पकड़ लिया तो फिर वो पूरा खंड खंड हो जाएगा तो भी वो छोड़ता नहीं है। वैसे ही मैं भी जब ये मायावादी लोगों का एक बार उन लोगों को पकड़ता हूं तो तब तक उसको धुलाई करते करते नहीं छोड़ूंगा जब तक वो हार नहीं मानेगा। और वाकई ऐसे ही थे। उनका जो प्रवचन जो था उनकी जो उनका जो प्रचार जो था वो सिंह की तरह था, उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उनके शिष्य जब जाते थे प्रचार करने के लिए तो कहीं स्थान पर वहां पर हल्ला हो गया, क्योंकि वहां पर उन्होंने ऐसा प्रचार किया मायावादी के विरुद्ध कि वहां पर बड़ा हल्ला हो गया और वो भागते भागते आए अपने गुरु जी के पास। सरस्वती ठाकुर के पास जब आए तो सरस्वती ठाकुर ने कहा तुम्हारा प्रचार सफल हुआ क्योंकि तुमने सही प्रचार किया। और ऐसे उनका प्रवचन कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता था, जो था वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधे लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हुआ होता करता था, और ऐसे उनका प्रचार था। और भक्ति विनोद ठाकुर की ये विशेष प्रार्थना थी और जगन्नाथ जी की कृपा से उन्हें एक संतान प्राप्त हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि एक मजिस्ट्रेट थे, और उन्हें जब ये संतान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उनका प्रथम अन्न प्राशन किया। तब उस समय अन्न खिलाने के लिए उन्होंने बिमला देवी के द्वारा जो भोग लगाया गया, जो उनका जो प्रसाद जो था, जगन्नाथ जी के बाद बिमला देवी को प्रसाद भोग लगाया जाता है, और उसी प्रसाद को यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने संतान को खिलाया। और क्योंकि उनको उन्होंने अपने उस प्रसाद को अपने संतान को खिलाए, इसलिए उनका नाम पड़ा बिमला प्रसाद। तो बिमला देवी के प्रसाद को खाने से उनका नाम पड़ गया बिमला प्रसाद, और तब से उनका नाम बिमला प्रसाद के रूप में वो प्रसिद्ध हुए और ऐसे वो जाने जाते थे। तो नामकरण के समय पर एक ऐसे विधि विधान होता है, एक ऐसा रिवाज हुआ करता है कि बच्चों के सामने बहुत सारी सामग्री रखी जाती है, तो वो संतान जो आकर वो जो सामग्री को प्रथम पकड़ेगा तो ये माना जाता था कि उसका भविष्य ऐसे ही है। तो सोने दागिने कभी रखते, कहीं पैसे रखते हैं और कहीं मदिरा रखते हैं वगैरह, और भागवतम वगैरह रखते हैं। तो अगर बच्चे ने गलती से आकर वो मदिरा को पकड़ लिया तो है गया इसका जीवन, तो लोग माता पिता फिर पछताने लगते। लेकिन यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जब इस क्रिया को जब यहाँ पर जब संपन्न किया, तो उस समय पर बिमला प्रसाद ने आकर श्रीमद् भागवतम को स्पर्श किया और उन्हें उठाया, और इससे ये सिद्ध हुआ कि भविष्य में बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे। और ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने पुत्र के प्रति ये उनकी एक आशा थी कि वो भी एक ऐसे प्रचारक बने, और उनके अंदर ऐसे दृढ़ संकल्प थी पहले से ही, बचपन से ही। ऐसे बताया जाता है कि जब बिमला प्रसाद जब 5 साल की आयु में थे, तब उस समय उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ आम लेकर आए, तो जब आम लेकर आए तो बिमला प्रसाद ने उसे उठा लिया उसे खाने के लिए, और खाने की क्रिया को जैसे ही करने जा रहे थे उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको फटकार दी, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, इसे अभी तक भोग नहीं लगा तुम खाने जा रहे हो। और ये सुनते ही वो 5 साल की आयु में उस समय उनकी क्या चेतना होगी देखिए, वैसे छोटे आयु में भी उनको बड़ा धक्का लगा, और तब से उन्होंने ये वचन लिया कि आज के बाद आम कभी नहीं खाऊंगा। और उन्होंने वाकई पूरे जीवन भर तक आम को स्पर्श भी नहीं किया, यहां तक कि आम की चटनी भी नहीं। उन्होंने उनके शिष्यगण बहुत कई बार उनको आम लेकर आते थे, बहुत सारे आम, बहुत निवेदन करते थे, लेकिन ये इन्होंने कभी उस आम को खाए भी नहीं। यहां तक कि वो औरों को खिलाते थे। एक बार एक मायावादी आया था और उनका यही कहना था कि सब कुछ एक है, तो उनका यही सिद्धांत हुआ करता था। तो बिमला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा ठीक है, तो वो अपने शिष्य को बुलाया मोर्चा सिंह करके उनका एक शिष्य था, बड़ा हिष्ट पुष्ट था, वो बगल में खड़ा हो गया, बोला इनको आम खिलाओ। अब उनके हाइट बॉडी को देखकर वो खाने लग गया, वो खाए तो बोला और खिलाओ, और खाने लग गए और खिलाया तो बोला नहीं अभी बस। बोला नहीं कैसे बस, तुम्हारा पेट भरा नहीं भरा सब एक है, और तो बोला दे दे अभी दे खाया जाएगा, नहीं खाओ। तो जब जबरदस्ती दिया तो बोला अब बस हो गया, हाथ में गुटली था तो बोला ये गुटली भी खाओ। बोला ये कैसे खाएगा, नहीं आम और गुटली सब एक है तो गुटली क्यों नहीं खा रहे। और वो इतना परेशान हो गया और वो अंत में वो स्वीकारते वो वहां से भाग पड़ा। वैसे वशिष्ठानंद सरस्वती ठाकुर के सामने कोई ऐसे तर्क के लिए कोई नहीं आता था, कोई अप सिद्धांत द्वांतहारी ने, वो ऐसे जितने भी अप सिद्धांत जो थे वो सारे सिद्धांत का खंडन करते थे, ऐसे इतने शक्त इतने उनका ज्वलंत प्रचार हुआ करता था। जब बिमला प्रसाद जब उनका उनके पिताजी का वहां से जब ट्रांसफर हुआ और कलकत्ता में उनका ट्रांसफर हुआ तो वहां पर भक्ति भवन का एक उन्होंने एक निर्माण किया और उस घर को बनाने के लिए वहां पर जो खुदाई किया जा रहा था तो वहां पर से उन्हें कुर्मा विग्रह प्राप्त हुआ। उस कुर्मा विग्रह को उन्होंने अपने संतान को दिया और भक्ति विमला प्रसाद बचपन से ही उस विग्रह की आराधना करना शुरू कर दिए थे। तो बड़ा शुभ माना जाता है कि जब घर के जमीन के नीचे से इस विग्रह को प्राप्त करना, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि कुर्म के ऊपर जो मंदार पर्वत रखा गया था पूरे मंदार पर्वत को संभालने के लिए, उसके भार को संभालने के लिए, वैसे ही इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे घर के भार को संभालने के लिए स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित हैं। और उसी विग्रह को उन्होंने बचपन से ही उनकी आराधना करने शुरू की है। जब 7 साल की आयु में थे तब उस समय उनका एक भाई था जिनका नाम था अच्युतानंद। अच्युतानंद जो थे वो कुछ कई दिनों तक बीमार थे और उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा था। तो विमला प्रसाद ने 6 दिन तक उन्होंने अपने भाई के समक्ष बैठकर कीर्तन किए 24 घंटा बिना रुके, और उन्होंने ऐसे 6 दिन तक लगातार जब कीर्तन किए तो कीर्तन जब 6 दिन के बाद जब समाप्त हुआ तब उस समय अच्युतानंद अपने वापस स्वरूप में आ गया और वो कहने लगे कि मैं पिछले जन्म में मैं श्री संप्रदाय का एक वैष्णव था और उनके शरीर में पूरे श्री संप्रदाय के तिलक आ गए थे और उन्होंने कहा कि मैं ये श्री संप्रदाय का वैष्णव था मगर गौड़िया वैष्णव के प्रति मैंने अपराध कर दिया था और इसलिए उस अपराध के दंड को भुगतने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इस प्रकार मुझे दंड प्राप्त हुआ। और उन्होंने अपने ये भाई विमला प्रसाद को धन्यवाद करते हुए, क्योंकि इनके नाम संकीर्तन को सुन सुनकर मेरे पाप सारे अपराध क्षमा हो गए, और इस प्रकार उन्होंने हाथ जोड़कर अपने देह को त्याग दिए। इस तरह भक्ति विमला प्रसाद ने अपने भाई को उद्धार किए नाम संकीर्तन के द्वारा। जब विमला प्रसाद जब 8 साल की आयु के थे वो बचपन से ही वो सारे भगवत गीता के सारे श्लोक को कंठस्थ कर लिया था। पूरे 18 अध्याय के जो जितने 700 श्लोक हैं वो सारे श्लोक को उन्होंने अपने कंठ के अंदर उतार लिया था पूरे अर्थ के साथ। और जब विमला प्रसाद जब 18 साल की आयु में हुए तब उन्होंने संस्कृत विद्यालय में उन्होंने शिक्षित प्राप्त की और बहुत अच्छी तरह उन्होंने संस्कृत को सीख लिए। और 22 साल के आयु के बाद उन्होंने विद्या अर्जित करना बंद कर दिया और पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दिए और तिरुपुरा में उन्होंने वहां पर एक राजा के साथ उन्होंने उनके राज्य को संभालने के लिए उनको उन्होंने मदद की है। और तिरुपुरा में क्योंकि उनका सप्ताह जो राजा इनकी बात को सुनकर अपना सत्ता चलाता था, इस तरह उन्होंने तिरुपुरा में सारे निवासियों को वैष्णव बना दिया। और इस प्रकार जब भक्ति बिमला प्रसाद जब वापस आए, और उस समय उसी के ठीक बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने काम से उन्होंने रिटायर करते हुए वहां से वो केवल उनका एक लक्ष्य ये हो गया कि अब श्रीमद् भागवतम का पाठ करना। तो हमेशा श्रीमद् भागवतम के पाठ करते थे और उनके समक्ष गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो कि वृंदावन में थे, तो वृंदावन को छोड़कर उनको जब ये सुनने में आया कि भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम पर अपनी टिप्पणी दे रहे, तो वो आकर रोज सुना करते थे। तो कोई पहचान नहीं पाते थे इन्हें, मगर भक्ति विनोद ठाकुर केवल देखते ही पहचान गए। एक सिद्ध महापुरुष दूसरे सिद्ध महापुरुष को जान सकते, तो वो जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने अपने पुत्र विमला प्रसाद को कहा कि तुम दीक्षा जब लोगे तो दीक्षा इनसे जाकर लेना। और विमला प्रसाद उनके पास रोज आते थे। अब बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो बाहरी दृष्टिकोण से उन्होंने कोई भौतिक विद्या अर्जन नहीं किया, जैसे साधारण भाषा में कह दिया जाए अनपढ़ की तरह था, लेकिन वास्तविकता उनकी आध्यात्मिक जो पहुंच, जो उनका जो विचार, जो बहुत उसमें बड़प्पन थी और इस उसकी भक्ति इतनी तीव्रता थी कि वो सारे भौतिक जो अयोग्यता भी उसके सामने कुछ किसी प्रकार का उसे रुकावट नहीं देता था। और जब विमला प्रसाद जब आए उनसे दीक्षा के लिए, जब उनसे भिक्षा मांगने के लिए कि मुझे आप दीक्षा दीजिए, तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि अभी नहीं, तुम जाओ, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा, जब महाप्रभु जब मुझे आज्ञा देंगे तब मैं देने को तैयार हूं। तो दूसरे दिन आते थे, जब दूसरे दिन आते तो वो पूछते थे कि आपने पूछा, बोला नहीं महाप्रभु आए तो थे लेकिन पूछने भूल गया, कल आना। तो फिर जाते थे, फिर दूसरे दिन फिर आते थे, ऐसे कई बार वो करने लगे लेकिन वो दे ही नहीं रहे, तो कह रहे थे कुछ ना कुछ बहाना बना रहे थे। यहां तक कि विमला प्रसाद ने उनके मन को जीतने के लिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जहां पर लघु शंका इत्यादि करने जाते थे, सोच इत्यादि करने जाते थे, तो उस स्थान को भी वो साफ सफाई करते थे उनके हृदय को जीतने के लिए। ऐसे कई दिन बीत गए और फिर भी वो टालते जा रहे थे। तब सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद आकर कहने लगे कि आप जी किसके भक्त हो, वो एक बहुत बड़ा एक छलिया है और वो एक कृष्ण, कृष्ण बड़ा छलिया है और उनके भक्त हो, और आप उनके भक्त होने के कारण आप मुझसे भी छल कर रहे हो, तो ऐसे मत करिए, मुझे आप दीक्षा दीजिए। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कह दिया था अपने पुत्र को, देखो दीक्षा नहीं मिलेगा तो आज घर पे मत आना। और उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप दीक्षा नहीं दोगे तो मैं ब्रिज के ऊपर से कूद के मर जाऊंगा, मैं अपने प्राण को खत्म कर दूंगा। अब देखिए एक पिता अपने पुत्र को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा नहीं मिला तो घर मत आना, और आज के तारीख में ऐसा है कि दीक्षा मिल गया तो घर मत आना, ठीक विपरीत है, लेकिन वास्तविक में यह शिक्षा दी जाती है। और उन्होंने जब ये कह दिया तो भक्ति विनोद तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने देखा कि इनकी तीव्रता इतना इतना लगन है, तो उन्होंने कुछ ऐसे मिट्टी लेकर उन्होंने ऐसे फेंक दिया और उनका नाम दे दिया कि आज से तुम्हारा नाम वृषभानुवी देवी होगा, और तब से उनका नाम वृषभानुवी दास करके उनको पुकारा गया। तो जो कि श्रीमती राधा रानी की सेविका के रूप में, और ऐसे भक्ति विनोद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से उनका दीक्षा होने के बाद इन्होंने ऐसे कई बड़े बड़े उन्होंने एक अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए जो इतिहास में बहुत नामचिन्ह हो चुका था। 1910 में ऐसे बताया गया है कि बिमला प्रसाद 7 साल तक उन्होंने हर दिन 192 नाम जप करते थे, 192 राउंड एवरी डे 7 साल तक। और जब वर्षा गिरती तो छाता पकड़कर जप करते थे। और भोजन के लिए भी वो जो एक मुट्ठी जो हुआ तो उसी को वो एक मुष्टी से जो पेट होता था भरता उतना ही खाते थे। और 22 घंटे जप करते थे और सोच इत्यादि जो है जो 2 घंटे का उस समय निद्रा इत्यादि उस समय हो समय देते थे। और ऐसे 1910 में उन्होंने इस क्रिया को करते हुए करीब 7 साल तक किए। और उस समय बताया जाता है कि एक कुंज बिहारी विद्याभूषण वो कलकत्ता के थे तो उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं भी इस गौड़िया वैष्णव की संस्था को स्थापना करने के लिए मैं भी कुछ सहयोग करूं। तो उन्होंने उन कलकत्ता में कई बड़े बड़े भक्तों से वैष्णवों से पूछताछ किया कि मुझे अगर इस संस्था को अगर स्थापना करना है तो क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है, वो है बिमला प्रसाद। बिमला प्रसाद के पास जाकर तुम इस कार्य को संपन्न कर सकते हो। तो बोले कहाँ मिलेगा? तो बोले वो तपस्या कर रहे। और उनको खोजते हुए जब मायापुर में जब खोजते हुए जब आए तो उनका पता इत्यादि पूछते हुए तब उन्होंने देखा बिमला प्रसाद। तो उन्होंने क्या देखा कि बिमला प्रसाद वो समुन्दर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको देखते ही पहले उनको प्रणाम किया और प्रणाम किया कि वो इतने में यहाँ से बिमला प्रसाद सीधा छलांग लगाए समुन्दर में स्नान के लिए। तो बोले अरे क्या हो रहा है, ये तो ये इतना, मैंने तो इनके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन ये तो इतना उछल कूद रहा है। और वहां से स्नान करके जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे भेंट करने आया था, मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे साथ चलिए और एक संस्था की स्थापना करेंगे गौड़िया वैष्णव की, चैतन्य महाप्रभु की जो आंदोलन है उसी को हम स्थापना करेंगे। तो इन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु आंदोलन की स्थापना करना, अरे क्या यहाँ पर तो संकीर्तन चल रहा है, देखो महाप्रभु वहां है, देखो नित्यानंद प्रभु पेड़ के नीचे निताई गौर प्रेमानंद करके बाहर। तो बोले अरे मैं इनको लेकर जाके क्या संस्था की स्थापना करूंगा। तो उसने पूरा आशा ही छोड़ दिया, वापस आ गया। और ठीक 7 साल के बाद 1918 में यही कुंज बिहारी विद्याभूषण के घर पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी पूरा शेव हेड और आंखों में ऐनक और एकदम तेजस्वी वैष्णव दिख रहा है। और वो कोई और नहीं था, वो था बिमला प्रसाद। और वो सीधे वर्ष भानवी देवी, तो उन्होंने सीधा डंडा लेकर वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि क्या अभी भी आपके हृदय में इच्छा है संस्था की स्थापना करने? तो बोला हाँ हाँ मेरे हृदय में इच्छा है। तो बोला चलो, बोला अभी, बोला आज के सूर्य अस्त के पहले ये काम हो जाना चाहिए। और उस समय केवल 4 बजा था शाम का और केवल 2 घंटे के अंदर ये संस्था रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये भी आश्चर्य हो गए। और वो गए और उनकी ऐसी ऐसा उनके हृदय में तीव्रता थी, लगन थी कि उन्होंने केवल 2 घंटे के अंदर 6 बजे के अंदर उन्होंने गौड़िया मठ को रजिस्टर्ड कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने पूरे भारत में 64 गौड़िया मठ की स्थापना की। उनके मन में प्रचार की जो भावना बड़ी तीव्रता रहती थी और वहां से उस प्रचार के लिए वो निकल कैसे पड़े, क्योंकि जब 7 साल तक यहां पर जब तपस्या कर रहे थे तब उस समय एक कागज का एक पन्ना उड़कर उनके पास आ गिर पड़ा। तो उन्होंने देखा उस कागज के पन्ने को, तो उस कागज के पन्ने में लिखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की तीव्र इच्छा थी कि उस स्थान को पुनः प्रकट करे जो खो गया है, जो तीर्थ स्थान को प्रकट करना और वैष्णव के सिद्धांत को स्थापना करना, ऐसे ही करना वास्तविक एक साधु का जीवन है। और ये सुनकर, ये पढ़कर, वो एक श्लोक पढ़कर वहां से निकल पड़े और उन्होंने केवल 2 घंटे के अंदर उन्होंने गौड़िया वैष्णव की संस्था की स्थापना की। ऐसे उन्होंने प्रचार करने के लिए अपनी खूब प्रयास लगाए और उस समय बताया जाता है कि बंगाल में केवल 2 जन के पास ही मोटर गाड़ी था और वो मोटर कार एक ब्रिटिश के पास था, दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास था। तो ये क्या करते थे उस समय, साधु का ऐसे लोग, साधु का ऐसे सुस्त थे जो चलकर आ रहा है, जिसका फटा हुआ कपड़ा है इत्यादि, ऐसे लोगों के मन में ये विचार होता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब प्रचार ऐसे शुरू किया एकदम टिप टॉप में और ऐसे भारी गाड़ी में बैठकर कि जब वो जब गाड़ी लेकर आते थे गांव में तो सारा भीड़ जम जाता था कि अरे बड़ी गाड़ी आई है, और सब भीड़ जम जाता था, और सब भीड़ जम जाता था तब वहां पर सरस्वती ठाकुर अब अपना भागवतम प्रवचन शुरू करते थे, क्योंकि पंडाल बांधने की जरूरत नहीं थी, केवल गाड़ी की आवश्यकता थी बस। गाड़ी आते ही सब बात जमा हो जाते थे और फिर भागवतम क्लास शुरू। और ऐसे उन्होंने प्रचार किए और वही मूड को लेकर श्रील प्रभुपाद ने भी किए प्रचार। जब श्रील प्रभुपाद जब विदेश गए तब उस समय जलदूदा जहाज से गए तो किसी ने, न्यूज एडिटर ने पूछा कि जब आप विदेश में आए तो जलदूत जहाज से आए, मगर अभी तो आप सन्यासी होने के बाद भी यातायात के लिए आप जेट एयरप्लेन उपयोग करते, ऐसे क्यों? तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, बाकी जितने भी न्यूज एडिटर लोग सोचे अब ये स्वामी जी फंस गया। न्यूज एडिटर ने कहा, क्योंकि आप लोग नरक बड़े तेजी से भाग रहे हैं तो तुम लोगों को ओवरटेक करने के लिए मुझे उससे बड़ा गाड़ी पकड़ना होगा। तो वैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के उस मूड को लेकर उन्होंने प्रचार किए हैं। और विमला जो भक्ति विनोद ठाकुर के मन में एक बहुत आकांक्षा थी कि इसी वैष्णव धर्म की पुनः स्थापना हो। तो ऐसे बताया गया है कि 1910 में जब भक्ति विनोद ठाकुर को एक जगह पर बुलाया गया था कि किस प्रकार वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, और उस पंडाल में, उस पंडाल के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का स्वास्थ्य जो था वो ठीक नहीं था। तब उसी समय बड़े प्रार्थना कर रहे थे भगवान से रोते हुए, तो इन्होंने, उनके पुत्र ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को उन्होंने अपने पिताजी को जाकर दिया। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने उस आर्टिकल को देखा तो बड़े खुश हो गए और वो पढ़ते ही इतने खुश हो गए क्योंकि उस आर्टिकल में यह सिद्ध किया था कि ब्राह्मण कौन है और वैष्णव कौन है, और ये पढ़कर इतने खुश हो गए और चिल्लाकर कहने लगे वाह सरस्वती सरस्वती करके उन्होंने उच्चारण, क्योंकि जो भी शक्ति हमें प्राप्त होती है ज्ञान के बोलने की जो शक्ति जो है वो सरस्वती देवी के द्वारा प्राप्त होती है, और उन्होंने उच्चारण किए, उनको संबोधित किए सरस्वती से और फिर कहा तुम जाकर करिए।
और सरस्वती ठाकुर आए, 3 दिन तक यहाँ पे प्रवचन था इन ब्राह्मणों के सामने, और कई प्रकार के ब्राह्मण थे, स्मार्त ब्राह्मण इत्यादि सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। तो इन्होंने इस प्रवचन को 3 भाग में विभाजन किया, उन्होंने 3 दिन का वो प्रवचन रखे, और प्रथम था प्राकृत खंड, दूसरा था हरिजन खंड और तीसरा था व्यवहार खंड। इस 3 भाग में इसको विभाजन किए। प्रथम में प्राकृत खंड में उन्होंने ये समझाया कि ब्राह्मणों के ब्राह्मण कितना महान है, और ब्राह्मणों की गुणावली गया कि ब्राह्मणों के अंदर इतनी शक्ति है, वो ब्राह्मणों के श्राप से ही समुन्दर नमकीन हो गया, वो ब्राह्मणों के श्राप से ही ब्राह्मणों के अंदर ऐसी शक्ति है जो बताया जाता है कि एक बंदूक की गोली से एक ही व्यक्ति को घायल कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों के गुणों के विषय में बताया कि ब्राह्मण कितना महान है, और सभी खुश हो गए क्योंकि सबको लगा कि हमारे बारे में स्तुति चल रहा है। फिर दूसरे दिन उन्होंने प्राकृत खंड के बाद हरिजन खंड में उन्होंने ये बताया कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है। तो ब्राह्मण कौन है तो उन्होंने समझाया, क्या ब्राह्मण जन्म के जन्म ले लिया तो क्या वो ब्राह्मण है? तो बोले नहीं, क्योंकि कोई अगर किसी के घर में अगर ब्राह्मण के घर में अगर जन्म ले लिया तो उसको ब्राह्मण के रूप में कैसे जाने जाएंगे? क्या आत्मा ब्राह्मण है? तो लेकिन शास्त्र में तो कहा गया है सभी आत्मा भगवान के अंश है, तो आत्मा तो ब्राह्मण तो नहीं है। तो क्या शरीर ब्राह्मण है? अगर शरीर ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार प्रकार के शरीर वाले को अलग अलग प्रकार का कलर वाला शरीर चाहिए, तो शरीर भी ब्राह्मण नहीं। अगर शरीर ब्राह्मण होता तो उनका पुत्र अगर अंतिम संस्कार करता तो उसी पुत्र को अंतिम संस्कार के समय पर अपने पिताजी के शरीर को जलाने का ब्रह्म हत्या लग जाता, तो शरीर भी ब्राह्मण नहीं है। तो बोले क्या ज्ञान ब्राह्मण है? जिसको ज्ञान है तो क्या ब्राह्मण है? बोले नहीं, क्षत्रिय के पास भी अच्छे ज्ञान रहते हैं। तो क्या जो धर्म का कार्य कर रहे वो ब्राह्मण है? नहीं, कभी कभी क्षत्रिय लोग भी अच्छे धर्म का कार्य करते हैं। तो कौन है ब्राह्मण? तब उन्होंने इस ब्राह्मण के विषय में बताया, इसको 3 भाग में विभाजित करते हुए, और वो क्या है? एक्टिविटी, बिहेवियर, कल्चर, ये 3 भाग में उन्होंने विभाजन किया, उनकी क्रियाएं और उनका स्वभाव और उनका संस्कार, इसके अनुसार जाना जाता है कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है। और इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर तीसरे दिन बताया कि किस प्रकार वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, और पूरे शास्त्र के उन्होंने निचोड़ देते हुए, उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि विष्णु दूत आए थे अजामिल की रक्षा के लिए, तो यमदूत लोग विष्णु दूत से घबरा गए, और जब यमदूत गए यमराज के पास तो यमराज ने अपने ही अनुचरों को फटकारे, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि कैसे विष्णु दूत जो हरिजन जिन्होंने हरि का ही एकमात्र शरण लिया है वो कैसे श्रेष्ठ है, और उस प्रकार वैष्णव जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो जन लोगों के लिए यमदूत को देखते ही जन लोगों को घबराहट होती है। जन लोगों के लिए घबरने वाली कौन सी स्थिति? यमदूत को देखना। लेकिन यमदूत के लिए घबराहट कौन है? विष्णु दूत को देखना है। और विष्णु दूत यानी कि वो वैष्णव जो सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने शास्त्र के द्वारा इन्होंने ये सिद्ध किया, और ये सिद्ध करने के बाद सभी लोग उनके जय जयकार करने लगे, और इतने जय जयकार किए कि फिर उनके चरण धूलि को लेकर उन्होंने उनके चरण धूलि को पान करने लगे, और सभी लोग जब उनके चरण धूलि को ले रहे, वहां पर इतनी भीड़ भाड़ हो गई कि फिर वहां पर पुलिस आकर रोक टोक लगाया और उन्होंने कहा कि सबको मिलेगा चरणामृत, चिंता मत करो। और एक बड़ा ड्रम लिया, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण को डुबाया और उसी पानी को लेकर सबके ऊपर पाइप से सबके मुंह में सब मारे और सभी लोग शांत हो गए। और वैसे तब उनका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और इस तरह उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार अद्भुत कार्य किए। और अपने जब उनको जब संस्था स्थापना करने के लिए अलग अलग जगह पर मठ स्थापना करने के लिए जब कोई स्थान मिलता था तो बड़े कैसे भी स्थान क्यों ना वो ले लेते थे, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना दे। ऐसे बताया गया कि एक स्थान पर जो उनको मिला जहां पर वो भूत लोग रहते थे तो कोई वहां जाता ही नहीं था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जगह मिला और बोला कि यहाँ पर तुम जो करना कर सकते हो। तो सरस्वती ठाकुर गए उस स्थान पर, और ये बंगाल में किसी स्थान पर है, और जब वहां पर जब उस स्थान पर जब अपना डेरा जमाए तब उसी समय उस दिन की बात है कि सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य के साथ बैठे थे, तो उनका शिष्य भागवतम पढ़ रहा था खिड़की के सामने बैठकर, और सरस्वती ठाकुर टीका लिख रहे थे। तो हुआ यूं कि खिड़की से एक भूत का हाथ आ रहा था, अब स्केल्टन जैसा जो केवल हड्डी वाला हाथ, वो बढ़ रहा था इनके सामने, ये इनके शिष्य के सामने। अब इनका शिष्य देखकर आ करके बेहोश हो गया। तो सरस्वती ठाकुर ने देखा और कहा क्या हुआ? बोला मैं भूत आया था। तो बोला भूत आया था तो आ क्या चिल्लाना है, हरे कृष्णा बोलने का। तो बोला ठीक है, और फिर वापस भागवतम पढ़ने के लिए बैठ बिठा दिए। अब थोड़ी ना भागवतम में ध्यान, अब ये ध्यान है दूसरी बार। और वो जब बैठा तो ध्यान इधर ही था, और कुछ समय के बाद फिर से आया, और जब फिर से आया तो हरे कृष्णा बोला और बेहोश हो गया। तो सरस्वती ठाकुर फिर देखे और बोले क्या हुआ? बोला फिर आया था। बोला फिर आया था तो हरे कृष्णा बोल के बेहोश क्या होना है, भागवतम पढ़ना है। तो बोला ठीक है। अब जब तीसरी बार वापस बैठा कुछ समय के बाद फिर आता है, और जब फिर आता तो सुना हरे कृष्णा, फिर पढ़ने श्लोक पढ़ने लग गया। फिर सरस्वती ठाकुर ने देखा उस हाथ को, उन्होंने कहा हरे कृष्णा, केवल हरे कृष्णा बोला कि वहां से गायब हो गया। और फिर सरस्वती ठाकुर ने कहा अब चिंता मत करो, उसे मुक्ति मिल गया है। और तब के बाद वहां पर कोई समस्या ही नहीं थी। और ऐसे सरस्वती ठाकुर चाहे कैसा भी स्थान क्यों ना, उस स्थान को ले लेते थे। और इतने नियम में इतने पक्के थे कि जब कुछ ग्रंथ भी पढ़ना होता था तो आचमन करने के बाद वो ग्रंथ को छूते थे, और अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया तो पहले आचमन वगैरह करने के बाद उनका परिक्रमा लगाते थे, और उनको परिक्रमा लगाकर फिर जगन्नाथ जी के प्रसाद की स्तुति गाते थे और फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। ये उनका उसूल था, ये नियम था। ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम में तो अगर वो परिक्रमा लगाते लगाते बीच में लेकिन यहाँ पर वाकई अपने नियम में यहाँ पर ऐसे इतने कड़क थे सरस्वती ठाकुर। और ऐसे बताया गया कि उनको एक स्थान पर कसिम नगर में, कसिम नगर का एक राजा था, उन्होंने उनको बुलाया था भागवत के ऊपर कुछ दो टिप्पणी बोलने के लिए। तब उस समय वहां पर जब सरस्वती ठाकुर गए तो वहां के जो स्मार्त ब्राह्मण जो थे उन्होंने उनको 4 दिन तक मौका ही नहीं दिया बोलने का, और ये लोग जानते थे कि ये सरस्वती ठाकुर जरूर ऐसी बात बोलेंगे जो कि सीधा शुद्ध भक्ति के विषय में बताते हुए हमारा पूरा जो जो बोल वाला है वो सब खत्म हो जाएगा। तो उन्हें डर था कि सरस्वती ठाकुर को मौका देने के डर से उन लोग ने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया और उनको चुपचाप रखे। और राजा पूछने लगा कि ये भागवत के विषय में कुछ कहने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तो राजा ने जब अपने उन स्मार्ट ब्राह्मणों से जब पूछा तो उन्होंने कहा वो कह रहे कि आप नीच जात के हो, आप नीच जात के होने के कारण वो यहाँ पर आके कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे उनका कहना है। और इतना ही नहीं, हम लोग ने उनको 4 दिन तक प्रसाद दिया, प्रसाद भी नहीं खाया। और इतना अभिमान, इतना घमंड कि वो प्रसाद को छूने को भी तैयार नहीं है। और 4 दिन तक वाकई सरस्वती ठाकुर ने भोजन को वहां के स्पर्श भी नहीं किया और वो 4 दिन तक केवल तुलसी पत्ता और जल पीकर अपना जीवन बिताते थे। और क्यों ऐसे 4 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं रखा किया और ये राजा को उलट सुलट बता दिया। फिर राजा ने कैसे तो कहा कि उन्हें कुछ तो मौका दिया जाए। और जब 5वें दिन में जब उनको जब थोड़ा मौका दिया गया तब उस समय उन्होंने 5 मिनट के लिए कुछ भागवत के विषय में सही सिद्धांत की स्थापना कर रहे थे, तब उसी समय बाकी स्मार्ट ब्राह्मण चिल्ला उठे और क्रोध में आकर चिल्लाते हुए बड़बड़ करने लगे। तो सरस्वती ठाकुर उसी स्थान को उसी समय वहां से छोड़कर निकल पड़े और उसी दिन रात को वहां से निकले। और रात के 11 बजे के ब्रज पटना की गाड़ी को उन्होंने पकड़े वहां से रवाना के लिए। और उस उनको उनको स्टेशन पे मिलने के लिए राजा भी आया था। तो राजा ने कहा कि आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो कि आप भोजन नहीं किए और इतने दिन तक आके बोले नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, पहली बात तो तुम्हारे स्मार्ट ब्राह्मणों ने कभी मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। दूसरी बात है, मैं भोजन इसलिए नहीं ग्रहण किया क्योंकि जो लोग भोजन को भोग लगा रहे थे वो सारे स्मार्ट ब्राह्मण थे और स्मार्ट ब्राह्मणों के अंदर इतनी अभिमान है जिसके अंदर भक्ति नहीं है। तो भक्ति बिना अगर कोई भोजन को देगा भी तो प्रसाद नहीं माना जाता, इसलिए मैंने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया और मैं अब यहां से जा रहा हूं। ऐसे कहकर जब वहां से निकले, दूसरे दिन उन्होंने जब 3 बजे वगैरह पहुंच कर स्नान इत्यादि कर कर फिर उन्होंने 3 बजे प्रसाद को भोग लगाकर बनाकर भोग लगाकर फिर ग्रहण किया। इतने वो कड़क थे वसूल में, अपने नियमों में। तो किसी ने पूछा कि आप इतने कड़क क्यों है नियमों में, तो इन्होंने कहा क्योंकि मैं आचार्य हूं और मुझे देखकर सब सीख रहे हैं। और उन्होंने अपने आचरण को इस प्रकार प्रकट किया। और इस तरह सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य को यह शिक्षा देते थे। उनके शिष्य लोग भी आपस में कभी कभी झगड़ा करते थे, कहीं कहीं जो संगमरमर का, बंगाल में संगमरमर का जो मठ था बहुत पॉश से बनाया, बहुत आलीशान जैसे बनाया था और उसी के अंदर लोग रहने के लिए झगड़ा करते थे आपस में। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इससे अच्छा ये संगमरमर के टाइल्स को लगाने से तो अच्छा था कि मैं इसे बेचकर बुक छापने का कोई मशीन खोल देता और उससे मैं और प्रचार करता। और इस तरह उनका एकमात्र इच्छा जो थी वो थी प्रचार। और उन्होंने ही एक नया टर्म निकाला और वो था, उन्होंने कहा मठ मेहंदी। एक था ग्रह मेहंदी, दूसरा मठ मेहंदी। मठ मेहंदी वो जो मठ में रहने के बाद भी प्रचार और सेवा नहीं करता है तो उसको मठ मेहंदी कहा गया। तो वैसे वो इतने उनका स्ट्रॉन्ग बोली था कि वो कभी कभी उनके शिष्य भी उनके सामने आने से घबराते थे। ऐसे बताया जाता है कि सरस्वती ठाकुर ज्योतिष विद्या में इतने निपुण थे कभी कभी अपने शिष्य के हाथ को देख लेते थे, ओ ज्यादा टाइम ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। तो बेचारा घबरा तो वो और कड़क हो जाता था अपने सिद्धांत अपने साधना में। और ऐसे सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के बीच का जो झगड़ा है वो हमेशा सुलटा देते थे। एक बार जो दो शिष्य लोग इतने झगड़ा कर रहे थे तो सरस्वती ठाकुर के सामने जब ये इस समस्या को जब लाया गया तो सरस्वती ठाकुर ने दोनों शिष्य को बिठाया और एक इस शिष्य को कहा तुम इस शिष्य के जो ये दूसरा जो व्यक्ति जो है जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हो उसके बारे में गुण गाओ, क्या अच्छे गुण है वो गाओ। तो ये उसके अच्छे गुण गाते थे और वो जब अच्छा गुण गाता तो ये भी अच्छा गुण गाता था और दोनों के अच्छे आपस में गुण गाकर दोनों को मित्रता बनाकर भेज देता था। और ऐसे वो आपस में शिष्यों के बीच में हमेशा मित्रता की भावना रखने का हमेशा प्रयास करते थे। और जो ऐसे जो कोई व्यक्ति अगर आता था, अगर जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण जैसे कहते तो उनके प्रति उनको बड़ा गुस्सा आता था। जो कब वहां पर बंगाल में इस प्रकार बहुत इस जो दूसरे दूसरे मंत्र का बहुत चर्चा ज्यादा है वहां पर, तो जैसे राधे कृष्ण राधे श्याम इत्यादि इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के बोलो भजन निताई गौर राधे कृष्ण राधे श्याम इस प्रकार, तो ये जब सुनते तो सरस्वती ठाकुर को बड़ा चीड़ होता था। और इन लोग का एक भजन मंडली निकलता था सड़क पर ऐसे गाते हुए, तो सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि जब भी ऐसे भजन करने वाले आएंगे तो तुम लोग क्या करना कि एक बड़ा ड्रम जैसा था उसको लेकर जाना और लकड़ी से खूब पीटना। तो इन लोग क्या करते थे, जब इन लोग जब आते थे अपना भजन मंडली वाले आते थे भजो निताई गौर राधे कृष्ण राधे श्याम जब बोलकर आते थे तो इन लोग तब सरस्वती ठाकुर कहते थे ये मंकी कीर्तन वाले आ गए, बंदर के भजन करने वाले आ गए, उसको भगाओ यहाँ। तो बंदर भजन करने वाले लोगों को कैसे भगाते थे, जोर से धार 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 आवाज करते और इन लोग क्या बोलते किसी को कुछ सुनाई भी नहीं देता था। और ये जो ध्वनि सरस्वती ठाकुर जब इस प्रकार अपने शिष्य से भजवाते थे तो बाकी शिष्य लोग ये पता लग जाता था कि हाँ ये बंदर भजन वाले आ गए और ऐसे उन लोगों को वहां से उस स्थान से हटा देते थे। तो इस प्रकार सरस्वती ठाकुर इतने स्ट्रांग थे, यहां तक कि श्री प्रभुपाद जी भी कहते अपने शिष्य को कि मैं अपने गुरु महाराज से 90% का छूट दिया हूं, मैं इतना लीनियंट हूं तुम लोगों के लिए। और जो कि जबकि सरस्वती ठाकुर ने हर शिष्य को 64 माला बोला श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा से केवल, और वो भी बड़ा कष्ट होता है 16 माला के लिए भी, लोगों को 16 माला तक पहुंचाने के लिए पूरा साल लग जाता है। और वैसे श्री प्रभुपाद अपने गुरु जी के विषय में इस प्रकार उनका एक बड़प्पन था कि मेरे गुरु जी कितने नियमों में कितने कड़क थे। और ऐसे लोग जब आते थे जो अपर संप्रदाय वाले थे, जो कभी कभी एक व्यक्ति जो स्मार्ट ब्राह्मण और वो संन्यास ले लिया और वो व्यक्ति सन्यासी का वेशभूषा है और हाथ में एक मछली है और बड़ा मछली को लेकर आ रहा है, तो सरस्वती ठाकुर कहने लगे क्या हो रहा है तुम साधु के वेश में मछली लेकर आ रहे हैं। तो बोला ये तो गंगार फल, भगवान ने कहा है पत्र पुष्प फल तो फल तो खाने बोला है, गंगा का फल है और क्या। तो इन लोगों के विषय में आप सरस्वती ठाकुर क्या बोले। तो ऐसे लोग थे, तो कभी कभी सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य लोगों को भेजते थे दान दक्षिणा लेकर आने के लिए, तो कुछ शिष्य लोग अपनी खूब बुद्धि लगाते थे तो वो जा एक शिष्य गया सीधा इनकम टैक्स ऑफिस ऑफिसर के पास और कहा कि आप मेरे साथ चलो कुछ दान दक्षिणा ग्रहण करना है। तो इन्होंने कहा मेरे पास टाइम तो नहीं है आने के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है आप मत आइए, आपका गाड़ी मुझे दे दीजिए। तो बोला ठीक है। तो वो उस इनकम टैक्स ऑफिसर का गाड़ी लेता था और वो गाड़ी में बैठ कर जाता था और बड़े बड़े दुकान के पास जाकर गाड़ी खड़ा करता। तो वो जो दुकान का मालिक घबरा जाता था, अरे हमारे यहाँ पर अभी रेट गिरने वाला है। और फिर वहां से निकलता था एक साधु और आकर कहता था दो बोनी चावल, हाँ लेकर जाइए। जो मांगा वो दे देते थे। और उन्होंने ऐसा इतना सारा दान दक्षिणा लेकर आए और सरस्वती ठाकुर के पास दे देते थे और कहते थे ये आपके लिए। सरस्वती ठाकुर को जब पता लगता था कि ऐसे लेकर आया है तो सरस्वती ठाकुर फटकार देते और कहते थे आज मेरा उपवास है, कुछ नहीं खाऊंगा। तो एक शिष्य गया था मुंबई में और मुंबई में आए और मुंबई में एक ग्रस्त व्यक्ति ने उनको भोजन के लिए आमंत्रण किया था। तो भोजन के लिए उनके समक्ष बैठ गए और जब भोजन के लिए भोजन की थाली परोसा सब कुछ हो गया, अब बस खाने की देरी थी मगर ऐसे ही बैठा रहा। तो वो मालिक पूछने लगा कि आप भोजन तो ग्रहण करिए। नहीं मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बोले किस बात की? क्योंकि हमारे मठ में एक पानी का पंप लगाना था तो वो पंप की बड़ी चिंता हो रही है। तो बोला हाँ तो वो सब ठीक हो जाएगा, आप लीजिए ग्रहण कर। नहीं नहीं मुझे ये चिंता है कि वो धनराशि कैसे आएगा। बोला सब भगवान दे के दे दे, मुझे जब तक आश्वासन नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं लूंगा, मेरा मेरे इधर से भोजन नहीं उतरेगा। तो उनकी पत्नी कहने लगी अरे हाँ बोल दो। अरे सन्यासी आए एक साधु घर पर आया, बिना भोजन करके जाएंगे अपराध हो जाएगा। तो इन्होंने हाँ हाँ आपको दे देंगे अब धनराशि, आप भोजन दीजिए। तो वो फिर भोजन लेते थे और फिर ऐसे करके वो चेक लेकर आए सीधे सरस्वती ठाकुर को बड़े शान से दिए, ये लीजिए आपके लिए। सरस्वती ठाकुर को जब पता लगा ऐसे मांग के लाया है तो सरस्वती ठाकुर कहने लगे मेरा आज उपवास है। और फिर पूछते थे पुरी ने पुरी महाराज से कि आपने क्या लाया दक्षिणा। तो पुरी महाराज कहते थे केवल दो मुष्टी चावल लाया। बोला हाँ उसी को लो और गौर निताई को भोग लगाओ, गौर निताई इससे ही प्रसन्न रहेंगे। और ऐसे अपने शिष्य को शिक्षा देते थे कि कैसे व्यक्ति का एक विनम्रता की भावना से व्यक्ति को कैसे अपने जीवन को बिताना चाहिए। उनके अंदर इतनी विनम्रता थी कि वो हमेशा कहते थे कि शेर की तरह प्रचार करना है और भक्तों के बीच में बकरी के बछड़े के समान रहना है। और ऐसे उनका एक विचार हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर ठीक इसका उल्टा है, बाहर जाएंगे तो बकरी का बछड़ा हो जाता है और इधर शेर रहते हैं हम भी किसी से। तो वैसे सरस्वती ठाकुर उन्होंने अपने आचरण से ये शिक्षा दी है कि वास्तविक विनम्रता कैसी रखनी चाहिए। जब सरस्वती ठाकुर जब गेट से जब एंट्री मारते थे तो उनके एक एक शिष्य आते थे प्रणाम करते थे, तो वो सरस्वती ठाकुर भी प्रणाम करते थे, फिर दूसरा शिष्य आता तो फिर दूसरा प्रणाम करते थे। ऐसे करके गेट से लेकर आश्रम तक सरस्वती ठाकुर केवल प्रणाम ही करते थे क्योंकि एक एक शिष्य बाद बाद में आते थे। तो जो जो आकर प्रणाम करते थे वो अपने शिष्य को भी दंडवत करते थे, इतने उनके अंदर विनम्रता थी। और वो शिक्षा देते थे किस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में आचरण रखना चाहिए। उनका एक निकट का एक शिष्य था जो उनका बड़ा प्रिय शिष्य था। तो उनके प्रिय शिष्य की माँ गुजर जाने के कारण उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर आना है। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा देखो स्मार्ट ब्राह्मण के विधि विधान की तरह मत करना अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करना है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा जो लिखा गया है ग्रंथ उसी के अनुसार सत्क्रिया शांति का उसी के अनुसार तुम अपने इसका अंतिम संस्कार करना माँ का। और उन्होंने अच्छी तरह समझाकर वहां से भेजा। लेकिन ब्राह्मणों का प्रभाव इतना था, ब्राह्मणों का जो स्मार्ट, ब्राह्मणों का जो संस्कार इतना भारी था कि वो कर नहीं पाया और उन्होंने उनकी बात को मान लिया। और जब वापस आए तो सरस्वती ठाकुर को जब खबर मिला कि उन्होंने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया, तो सरस्वती ठाकुर ने कहा यहीं पर ही हमारी संस्था की शुरुआत हुई और यहीं पर ही अंत है। और उन्होंने ये टिप्पणी दिया, बोले कहने लगे मैंने जिसको अपना इतना समय दिया वही नहीं ठीक से मेरी बात को सुन पाया, अब क्या आशा रखे। तो सरस्वती ठाकुर उस ऐसे उनके पास एक एक शिष्य की उनको ऐसी तलाश थी जो पूरे विश्व भर में जाके प्रचार करे। तो जब सरस्वती ठाकुर के इस स्थान, इस जगत से जब सरस्वती ठाकुर जब निकलकर अपने भगवान की नित्य लीला में जब प्रवेश हो गए, उसके पश्चात हमेशा ये चिंता लगा हुआ करता था कि कौन प्रचार करेगा। तो गौर गोविंद शास्त्री एक समय की बात थी कि वो अपने शिष्य लोगों को प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन देते हुए उन्होंने ये समझाया कि पृथ्वी राचे नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरे नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु का ये कहना है। और उन्होंने ये कहने के बाद वहां से निकले श्रील प्रभुपाद उसी कथा के बाहर दरवाजे के इधर बैठे थे, उनका कुछ श्रवण बाकी था तो कर रहे थे वहीं पर ही बैठ कर। तो ये बाहर आया और अपने प्रभुपाद जी से बात करने लगे, अभय बाबू देखो मैंने आज ये बात कहा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ये बात सिद्ध होगा करके, पूरे विश्व भर में प्रचार कैसे हो सकता है, कहीं होना मुश्किल लग रहा है। तो प्रभुपाद सीढ़ी से दो कदम नीचे उतरे और कहा कि निश्चित होगा, एक सरस्वती ठाकुर का एक बड़ा मूर्ख शिष्य पूरे विश्व भर में प्रचार करेगा। तो ये विचार करने लगा क्या मेरे बारे में कह रहा है, फिर दो कदम और नीचे उतरे और कहने लगे मगर वो तुम नहीं रहोगे, और ऐसे कहके चले गए। तो इन्होंने देखा अरे ये अभय बाबू बिजनेस कर रहा है और मुझे, मैं सन्यासी होकर मुझे ऐसे कह रहे। तो हुआ यूं कि कई दिन बीत गए, कुछ वर्ष बीतने के बाद एक विदेशी वैष्णव आभूषण धारण करते हुए जगन्नाथपुरी के यहाँ पर वो बैक टू गॉड एंड मैगजीन बेच रहा, और वो बैक टू गॉड एंड मैगजीन का जो टाइटल है वो है योगा इज नॉट अ जिम्नास्टिक। तो इन्होंने देखा है गौर गोविंद शास्त्री, उन्होंने कहा अरे ठहरो ठहरो तुम तो कुछ नया चीज दिख रहा है, और बोले वो भी विदेशी और ऐसे वेशभूषा में। तो बोले क्या क्या कर रहे हो, बोले नहीं मैं ग्रंथ को बेच रहा हूँ, ये लीजिए मैगजीन आप लीजिए। तो बोले देखा, तो उन्होंने देखा योगा इज नॉट अ जिम्नास्टिक, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का स्टैंडर्ड है, ये तो उनका कहावत है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिला, कौन, बोले मेरे गुरु महाराज के द्वारा हम ये सेवा कर रहे हैं। बोले कौन है, तो उन्होंने पलट के देखा तो बोला अरे ये तो अभय बाबू हमारे साथ कल तक था लेकिन आज ऐसा कमाल कर दिया कि पूरा विश्व भर में इन्होंने दंगा हो जा दिया। और बड़े चकित हो गए कि श्रील प्रभुपाद ने कुछ ही समय पर पूरे विश्व भर में उन्होंने कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, और अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के आदेश को पालते हुए। तो उसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस तिरुभाव के दिन के उपलक्ष पर आज हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तरह हमारे अंदर भी एक दृढ़ता है कि हम भी कृष्ण भक्ति को दृढ़तापूर्वक और उन भजन दृढ़तापूर्वक कर सकें। हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हरे कृष्ण।